सहजता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। विजय हमारी पर
संगम युग की सुहावनी घड़ियों में पतित पावन ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है। बाबा का एक एक बच्चा दुनिया के आगे सैंपल है। आप किसी भी देश में हो, शहर में हो, गांव में हो, कोई भी काम धंधा करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप पाएंगे कि आप बाबा के घर का एक सैंपल है। वो बात अलग है कि हम सब नंबर वार हैं। कोई कोई बाबा का बच्चा आप देखेंगे एकदम जहां भी जाएगा रहेगा लोग कहेंगे हाँ ये पूरा योगी है, और कोई कोई ठीक ठीक है, लेकिन हर बाबा का बच्चा सैंपल है। क्योंकि बाबा ने अपने हर बच्चे में एक ऐसी विशेष शक्ति भरी है। कौन सी शक्ति है वो? पवित्रता की शक्ति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहचान क्या है? यहां की पहचान है पवित्रता। बहुत लंबा समय हुआ, एक बार एक संत तो नहीं, संत नुमा व्यक्ति थे, होते ना कई कथा वगैरह करते हैं, ऐसा घर बार छोड़ा हुआ नहीं था, घर गृहस्थी में रहता हुआ कईयों को गुरु मंत्र वगैरह देते थे। उन्होंने हमारा ज्ञान सुना, फिर कहने लगे कि बहन जी, क्योंकि वो खुद भी गृहस्थी में ही रहता था, गृहस्थी में रहता हुआ गुरु था, तो बोला कि बहन जी आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर दो बातें हटा दो तो आप देखना आपके यहां भीड़ लग जाएगी। कौन सी दो बातें हैं? एक तो पवित्रता, दूसरा खान पान की। अच्छा, तो उसने कहा बहन जी एक जो आप कहते हो ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आप ये मत कहिए, आप कहिए कि है, सब में है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कहा बहन जी आप सबको क्यों कहते हैं पवित्र बनो? इसलिए घर गृहस्थी में आपस में इनका झगड़ा हो जाता है और घरों में भी थोड़ा कशमकश हो जाती है, आप बताओ पवित्र रहना चाहिए, हम भी कहते हैं जितना जो रह सके, क्योंकि खुद भी तो गृहस्थी था ना बेचारा। तो मैंने उस संत से पूछा कि स्वामी जी एक बात तो बताइए। बोला हाँ पूछिए। मैंने कहा अगर हम लोगों की तरह आपकी तरह ही सबको कहें कि भगवान तो कण कण में व्यापक है, तो मनुष्य के ज्ञान में और परमात्म ज्ञान में अंतर क्या हुआ? फिर हमारा योग कहां लगेगा? सब में भगवान है। अब आप में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, अब मैं योग इससे लगाऊं, इससे लगाऊं, इससे लगाऊं, ये तो मन में दुविधा हो जाएगी। फिर आप कहते हैं पवित्र भी ना है, तो अगर ये पवित्रता ही नहीं तो कोई सफेद साड़ी का नाम ब्रह्मा कुमारी नहीं है? दुनिया में बहुत से लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, अभी तो हमें देख के तो बहुत ही पहनते हैं, साड़ी भी सफेद पहनते हैं, मैंने देखा कई लोग हमारी तरह ही अभी ब्लाउज भी ऐसा फुल बाजू का पहनते हैं। तो फिर ब्रह्मा कुमारी कैसे होगी? ब्रह्मा कुमारी का अर्थ ही है जो पवित्र है। फिर शुरू से हमने चंद्रमणि दादी जी से, क्योंकि सुना हुआ था, दादी कहती थी देखो, कई बार कहती थी सुषमा देखो हमारा ये जो जीवन है, जो जन्म है ना, कितना ऊंचा है, हम ब्रह्मामुख वंशावली हैं, हमारा जन्म ही पवित्रता से है। हमारे मम्मा बाबा को देखो, दादी को बहुत नशा होता था, तो हमने कहा कि अगर ये पवित्रता नहीं तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या हुआ। फिर वो तो बेचारा हाथ जोड़ के चला गया कि आप लोग तो बहुत पक्के हो। तो वास्तव में ब्रह्मा कुमार कुमारी वही है, कौन, जिसके अंदर पवित्रता है। बैज लगा लिया, अब आजकल बैज इतने अच्छे अच्छे बैज मिलते हैं, मैं कई बार भाई बहनों को लगे हुए देखती हूं, जैसे ये टीचर्स का बैज है, ऐसे बैज भी वो दूसरे बनते हैं और भाई बहन लगाते हैं। तो केवल एक बैज का नहीं, एक भाई था खाने में थोड़ा कमजोर था, कहता बहन जी जिस दिन मेरे को आइसक्रीम खानी होती है ना, मैं बैज को जेब में डाल लेता हूं और आइसक्रीम खा लेता हूं बाहर के। हम ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं है। वैसे बहुत अच्छा था, सेवा खूब करता था, ज्ञान में भी पक्का, एक ही उसकी कमजोरी थी, आइसक्रीम। हमने कहा भाई तू घर में बना के खा ले, कहता बहन जी कौन बनाएगा रोज रोज, मार्केट में तो वैरायटी मिलती है। मनुष्य देखो कहां कहां हिल जाता है। हमारी मम्मा कहती थी प्योरिटी इज रॉयल्टी। आप कहीं भी दुनिया में जाएं, जो दुनिया में थोड़े सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, आप भी मिले होंगे, हम भी कई लोगों से मिले हैं, आप देखेंगे वो कहते हैं बहन जी मैंने अपनी जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया। हमारे पास एक अग्रवाल फैमिली आती थी, वो माता के चार पांच बच्चे थे, उसको फिर बाद में ज्ञान मिला। बोली बहन जी मैं तो पहले से ही कभी अपने बच्चों को डांट नहीं लगाई। मैंने कहा बड़े अच्छे हो। कहती है ना मेरे को गुस्सा आता है, बच्चे नहीं कुछ करते, ठीक है, पैसे वाले थे। तो दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, एकदम शांत शालीन है, उनका उठना बैठना बातचीत करना बहुत रॉयल है। लेकिन हमारी रॉयल्टी और दुनिया की रॉयल्टी में ये अंतर है, पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है। अब पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य से नहीं है, वो तो दुनिया में कई लोग हैं शादी नहीं करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कई समाज से भी विनोबा भावे जैसे लोग रहे जो खुले रूप से कहते थे और खुद भी रहे कि पवित्रता ब्रह्मचर्य ही जीवन है। महात्मा गांधी जी को भी जब फील हुआ कि देश को आजाद कराना है तो 60 बरस की आयु में उन्होंने अपनी वाइफ को बा बा माना, मां, कस्तूरबा बा कहा। 60 बरस की आयु में पवित्रता को अपनाया और अपनी युगल को क्या कहा, कस्तूरबा बा। उन्होंने भी ये महसूस किया कि पवित्रता के बिना देश आजाद नहीं हो सकता। तो जो भी हमारे देश में बड़े बड़े लोग हुए हैं, ये तो वेस्ट के कुछ फिलोसोफर्स आ गए जिन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन हमारे यहां तो पवित्रता का इतना मान केवल आध्यात्मिकता में नहीं लेकिन समाज सेवियों में, देशभक्तों में भी रहा। गांधी जी ने तो ब्रह्मचर्य पर किताबें लिख डाली, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ब्रह्मचर्य धारण करना, पवित्रता धारण करना, यह तो एकदम पहला छोटा लेवल है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ज्ञान समझ में आ जाता है, भगवान को पहचान लेते हैं, योग में कुछ अनुभव होने लगते हैं, कहते हैं ये पवित्रता तो ठीक है अपनानी चाहिए। लेकिन मम्मा बाबा में जो हमने पवित्रता का लेवल देखा, साकार में बाबा थे, बाबा के सामने ही आप जाते थे। बहुत से भाई बहन कहते थे, भाई बाबा के सामने जाते हम तो सब कुछ भूल गए। तो बाबा के पास कोई जादू नहीं था, भूल नहीं जाते थे, लेकिन बाबा के अपने अंदर आत्मिक शक्ति का इतना गहरा अभ्यास था। मान लो बाबा अपने कमरे में बैठे हैं, छोटे हॉल में बैठे हैं, बाबा कहते थे आओ बच्चे, बस इतना दूसरा प्रसन्न हो जाता है। मैं बाबा के आगे गई, बाबा ने कहा आओ बच्चे। बाबा इतनी हायर कॉन्शियस में होते थे, जो सामने वाला कैसा भी समस्याएं लेके आता, दुख कष्ट लेके आता, आओ बच्चे में ही उसके वो सब खत्म हो जाते। ये है पवित्रता, जिसमें कॉन्शियस चेंज हो जाए। ऐसे नहीं, मैंने ब्रह्मचर्य को तो धारण किया है और बैठ के हम पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। अब आजकल तो पढ़ने का फैशन खत्म हो गया, जब से मोबाइल आ गए हैं। अब तो गूगल बाबा में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, फिर कैसे कैसे कमेंट्स करते रहते हैं। कोई कोई कहते हैं उसी में पिक्चर है बहन जी, हम तो उसी में पिक्चर देख लेते हैं। अगर हम गूगल में इसी काम में रहे तो इसका मतलब मेरा मन बुद्धि का आकर्षण तो वही है ना। बाबा मुरलियों में आगे कई बार कहते थे बच्चे, कोई कोई बच्चे वो पिक्चर्स के नहीं, आगे शहरों में बड़े बड़े पोस्टर्स लग जाते थे, तो बाबा कहते हो कई बच्चे आप पोस्टर देखते रहते हैं। जिसके अंदर पवित्रता की धारणा है वो पोस्टर क्यों देखेगा गंदे। तो मेरी मनोवृत्ति क्या है? बाबा की वृत्ति इतनी शुद्ध थी, जो कोई भी कैसा भी आता था, बाबा साकार में थे। एक बार कुछ 3-4 इनकम टैक्स वाले लोग आए तो बाबा को बताया, बाबा ऐसे 3-4 इनकम टैक्स वाले आए हैं और वो यहाँ थोड़ी असेसमेंट करना चाहते हैं, इंक्वायरी चाहते हैं। बाबा ने कहा बुलाओ बच्चे। जैसे ही आए बाबा के कमरे में, फिर उनको मिलाया, बाबा ने कहा आओ बच्चे पूछो। फिर बाबा अपने आप उनको ले गए। ये जो बाबा का कमरा है ना, जहां हम अभी बैठते हैं, तो आप देखेंगे जो आगे का दरवाजा है जिधर से बहने जाती हैं, वो ही था पहले। ये जहां एक कुर्सी कॉर्नर में है, ये पीछे जहां पीछे भाई बैठते हैं, एक छोटा सा तो ऐसे गलियारा सा था और एक ये रूम ही बना हुआ था जहां ईशु दादी रहती थी। तो उसी में कुछ स्टोर, जैसे बाबा एक अलमारी में वो फल वल भी रखते थे थोड़े बाहर की तरफ। और बाबा ने कहा आओ बच्चे। बाबा बाप है ना, आप बच्चों को अपना घर दिखाता है। देखो बच्चे, यहाँ बहुत बाबा के बच्चे आते रहते हैं, देखो ये बाबा का स्टोर। बाबा ने अपने आप उनको सारा घर बच्चे 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 कह के दिखा दिया। देखो बच्चे, यहाँ बाबा का भोजन बनता है, बाबा को भोग लगाते हैं। अब वो क्या पूछते हैं? कॉन्शियस इतनी हायर है। आप में से कई भाई ऐसे होंगे जो व्यापारी होंगे, आप सवेरे 6-7 बजे उठे और आपको पता पड़े कि बाहर इनकम टैक्स वाले खड़े हैं, आपके यहाँ रेड के लिए आए हैं, तो क्या हाल हो जाएगा? हैं? एक आधा तो छिप जाएगा, कहेगा बाबा अब तू ही सार, जो देखता है देखने दे इसको, और सोचेगा कहीं फोन करूं कुछ करूं, क्योंकि वो तो आते ही आपके फोन वोन सब जब्त कर लेते हैं। लेकिन बाबा इतनी हायर कॉन्शियस में था, आओ बच्चे बच्चे, बाप आपको अपना सारा घर। उस समय तो मधुबन छोटा सा ही था, जहां आजकल टेलीफोन एक्सचेंज है, इसके पीछे जहां बिस्तर का स्टोर बना हुआ है, यहां ये सारा किचन था जहां खाना बनता था। इधर का किचन फिर बना जहां आजकल टोली बनती है, और ये नीचे वाला तो बहुत बाद में बना है। तो बाबा उन छोटे से घर में उनको सब जगह घुमा के ले आया। अब जब आप सोचो आप किसी व्यक्ति को ऐसे करेंगे, भैया ये ऊपर का पंखा बंद कर दो, साइड का चाय चला, तो आप सोचो वो तो भूल ही गए कि हम क्या पूछने आए थे। उन्होंने कहा बाबा हमारी तो ड्यूटी है, हम इसलिए आ गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, और कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं बाबा, बाबा अपने मधुबन की तो रसम क्या है, कोई भी आए चाहे एक दिन के लिए आओ चाहे 10 दिन के लिए, आपको भी मिलने वाली है सौगात। सौगात तो बाबा जरूर देगा। अब जिसको आपने सौगात भी दे दी, घर भी दिखा दिया, अब क्या पूछेगा वो, अब क्या पूछेगा। ये है पवित्रता की शक्ति, जिसको बाबा हमें समझाते हैं। अव्यक्त मुरलियों में आता है बच्चे, कोई भी बात हो जाए फुल स्टॉप लगाओ। बाबा ने ये नहीं कहा इनकम टैक्स वाले आ गए, क्यों आए हैं, उनको थोड़ा चाय पानी पिलाओ, बिजी करो। कह सकता था ना बाबा, साधारण मनुष्य ऐसे ही करता है, अरे आ गए पहले इनको नाश्ता वाश्ता करा दो। और वो तो आते हैं तो चाय पीते नहीं, क्योंकि फिर उनके यहाँ रेड कैसे होगा। वो तो कहते हैं नहीं हमें कुछ खाना पीना नहीं है। बाबा ने ये नहीं कहा इनको चाय पानी पी ना, हाँ बच्चे लाओ, बाप है बच्चों से मिलेगा, आओ बच्चे। स्वाभाविक बाबा के अंदर ये था। ये है पवित्रता कॉन्शियस। मेरी कॉन्शियस कैसी है, मम्मा एक बार अमृतसर में आई, तब हमारे बहुत थोड़े से सेंटर थे, एक अमृतसर में था, एक अंबाला में था, एक आधा और कहीं होगा दिल्ली में थे, एक दो जैसे कमला नगर वाला पुराना सेंटर, कानपुर और लखनऊ और कलकत्ता, बस ये थोड़े गिने चुने सेंटर थे, एक दो सेंटर बॉम्बे में होंगे बस। मम्मा आई, उन दिनों में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत विरोध था, लोग बहुत अपोजिशन करते थे। एक भाई अमृतसर में, उनका कॉलेज था, अब तो उसने शरीर छोड़ दिया, काफी समय तक रहा, वो पक्का था ज्ञान में, और उसकी युगल एकदम अगेंस्ट। अब उसको पता पड़ा कि अमृतसर में मम्मा आ रही है, उसने कहा कि, उसकी वाइफ ने कहा मैं देखूंगी तेरी मम्मा कैसे अमृतसर में घुसती है। उनका कॉलेज था लड़कों का कॉलेज, उसने लड़कों को तैयार कर लिया उसकी वाइफ ने। मम्मा आई अमृतसर में, उन समय तो बड़े बड़े आश्रम नहीं थे ना, छोटे थे, और मम्मा आई रही तो ऊपर कमरा था जहां मम्मा थी, और मालूम था कि ये लोग कुछ करेंगे। दिल्ली से जगदीश भाई भी गए हुए थे अमृतसर में, अब वो लोग लड़के लड़के आए आ गए, कुछ बड़े लोग भी थे और वो उसकी वाइफ भी। हम मम्मा से मिलेंगे, कहाँ है आपकी मम्मा, ऐसा बोला किया। हमारी चंद्रमणि दादी जी तो थी ही एकदम बहादुर। चंद्रमणि दादी जी दरवाजे पे ऐसे खड़ी है दरवाजा पकड़ के, क्योंकि मॉब है, मॉब तो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे आने नहीं दिया। जगदीश भाई थे, फिर जगदीश भाई बाहर आए, उनमें से कि एक दो को बुलाया, बोला देखो ये तो आप समझते हो ना ये घर कितना बड़ा है, और आप मम्मा से मिलना चाहते हो तो इतने सब लोग कैसे जाएंगे, आप अपना एक ग्रुप बना लो दो तीन, जो 10-10, 20-20 लोग जाओ मम्मा से मिलो, मिलने में मना नहीं है। उन्होंने भी समझा कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं वासिफ, उन्होंने एक ग्रुप बनाया 10-15 लोगों का। जैसे ही उनको, फिर जगदीश भाई ने दादी को भी बताया, दादी हटी, आप सोचो कि आपको कोई आने ना दे और फिर आपके लिए दरवाजा खुले तो आप कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, मैं आगे धम 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 धम, वो तो सीढ़ियों में ऐसा चढ़े, और मम्मा कमरे में बैठी हुई, जैसे ही आए दरवाजे से यूं मम्मा को देखते जाए बैठे चुप। जब सब आके बैठ गए, मम्मा को भी अंदाज हो गया होगा ये, मम्मा ने कहा बच्चे सब ठीक है, अब बताइए वो किस भावना से आए। और मम्मा ने क्या कहा, बच्चे सब ठीक है, अच्छा कुछ पूछना है, कुछ कहना है, पूछिए। अब क्या पूछेंगे? जैसे हम क्लास के बाद कहते हैं कुछ पूछिए, आप पूछते ही नहीं। सब चुप। फिर मम्मा ने थोड़ी ज्ञान की बात सुनाई, दृष्टि दी, टोली दी, और सब हाथ जोड़ते हुए। और वो तो क्योंकि गए बैठे मम्मा बात करेगी, टाइम लगेगा ना। और जो नीचे पीछे रह गए लोग, कहा देखो कहा था ना इनके पास जादू है, अब वो आएंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे। जो पीछे खड़े हैं वो सोच रहे हैं ये ऊपर वाले तो वापस ही नहीं आएंगे, गए। और फिर जब वो वापस आए इतने शांत, उन सबको कहते हैं इनकी मम्मा तो देखने वाली है, ऐसे हाथ जोड़ के। फिर थोड़े थोड़े गए मिले, फिर बाद में जगदीश भाई को उन्होंने राय दी, कहा आप लोग अपनी मम्मा को ऐसे छिपाते क्यों है, सबको दिखाओ। हमारे यहां ऐसे दिखाने वाली तो कोई चीज नहीं है ना, पर उन दिनों में अपोजिशन बहुत था तो मिलवाते तो ढंग से थे। तो ये मम्मा की अपनी साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। हमें कहा जाए, हाँ बाबा कई बार मुरली में कहता आज भी कहा चुप रहो, अगर हम पूछते हैं कौन मौन में रहेगा तो हम सोचने लग जाते हैं। मौन तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको कहूंगी एक हफ्ता मौन में रहो तो बड़ा सोच सोच के कोई कोई हाथ उठाएंगे। लेकिन ये साइलेंस पावर जो है, ये हमने जो मम्मा बाबा में देखी, दादियों में देखी, इसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ही पवित्रता है। वो जो अपोजिशन फिर चंद्रमणि दादी ने उनको सबको, उसके बाद बाबा ने कहा ये शेरे पंजाब है। चंद्रमणि दादी को शेरे पंजाब कहते थे। मम्मा आई और इतना हंगामा हुआ, सब हुआ, बाबा ने कहा ये बच्ची शेरे पंजाब है। सब लोग दादी को कहते ही शेरे पंजाब थे। तो ये जो हमारे यज्ञ में पवित्रता की शक्ति है, यही एक सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारा यज्ञ तो चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन हम यहां पब्लिसिटी नहीं करते। बाबा ने हमें सिखाया ही नहीं पब्लिसिटी करना। वो तो कोई एक साधु संत महात्मा, आप देखो जैनीस में कोई एक थोड़ा एक महीने के व्रत रखते हैं, दो महीना छह महीना रखते हैं, कितना उनका मार पूजा ये वो करते हैं। और वो फिर एकदम जो व्रत रखेगा बेचारा खाएगा ही नहीं तो शरीर में ताकत क्या रहेगी, फिर तो शांति हो जाते हैं। बाबा ने हमें बैलेंस, पवित्रता का मतलब है बैलेंस, अति नहीं। हम कर्म योगी राज योगी हैं, कर्म भी करो घर गृहस्थी में भी रहो। बैलेंस कौन सा है पहचानते हैं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। लेकिन अंदर से दृष्टि कौन सी रखनी है, दृष्टि कौन सी है, आत्मा के नाते भाई भाई। बाबा की युगल थी ना यशोदा मैया, बाबा बाबा बना माना ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया तब तो ब्रह्मा कहलाया। जैसे सबने बाबा को बाबा कहा तो उनके लिए तो आसान था, यशोदा ने भी बाबा को बाबा कह लिया। उसका पति था ना, पर वो भी उसको भी अनुभूति हुई नहीं ये बाबा है, बाबा ही कहती थी। हमने यज्ञ में जब शुरू में आए, चाहे हम छोटे छोटे थे, हमने क्या देखा, यहां बहुत परिवारों के परिवार हैं, लेकिन उनसे ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि ये दो आपस में कुछ हैं। आज सवेरे मुरली से पहले मैंने आपको एक दादी का नाम सुनाया था, ध्यानी दादी। आप लोगों ने, इन बहनों ने भी नहीं देखा होगा, ध्यानी दादी मम्मा की लौकिक में मौसी थी। ध्यानी दादी अंबाला में रहती थी। उनका नाम ध्यानी इसलिए था क्योंकि वो ध्यान में जाती थी, ट्रांस मैसेंजर थी। और उसकी ही विशेषता थी कि वो जैसे अभी तो जाते हैं ना ट्रांस मैसेंजर जो भी हमारे, वो ऊपर जाते हैं तो उनको ऊपर का ही ध्यान रहता है, नीचे का कुछ नहीं। लेकिन ध्यानी दादी थी, ट्रांस मैसेंजर थी, ध्यान में जाती थी, उसकी आंखें भी कभी कभी थोड़ा खुला ही रहती थी। और उसको ऊपर का भी सब और नीचे का भी सब ध्यान रहता था, माना दोनों देखती थी इकट्ठा। उसका नाम ही ध्यानी दादी पड़ गया। अब ध्यानी दादी और मम्मा, ध्यानी दादी मौसी थी मम्मा की, आप उनका व्यवहार अगर देखते आप समझ ही नहीं सकते थे ये कोई मौसी भांजी है। ध्यानी दादी भी मम्मा को तो मम्मा ही कहती थी ना, आयु में तो जरूर बड़ी होगी। दादियां ध्यानी माता कहती थी क्योंकि शुरू शुरू में बहनें आई, बाकी छोटी छोटी थी, जो कुछ ऐसे बड़ी उम्र की थी। ध्यानी दादी किचन संभालती थी, भंडारा, तो सब ध्यानी माता ही कहते थे, कंट्रोलर थी। लेकिन ध्यानी दादी भी आयु में बड़े होते हुए भी मम्मा को तो मम्मा ही कहती थी ना, ऐसे थोड़ी कहते थे कि इसको नाम लेके नहीं। फिर उसके बाद हमने बहुतों को देखा, हमारी ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी, जिनमें बाबा व्यक्त बाबा आते थे, ऑलराउंडर दादी माँ और गुलजार दादी बेटी। जब दिल्ली में करोल बाग का सेंटर ले लिया, दोनों वहीं रहते थे, जो बात कोई ऐसी होती थी दादी, ऑलराउंडर दादी कहती थी किसी को कुछ पूछना है कहना है कोई चाहता है, कहती थी हाँ गुलजार दादी से मिलो। कभी ऐसे नहीं कहती थी गुलजार से मिलना, वो तो उसकी बेटी थी, गुलजार दादी को बताओ। ऑलराउंडर दादी भी अपनी बेटी को दादी ही कहती थी। हमने ये देखा यहां आकर, ये है पवित्रता, जो बाबा हमें मुरली में कहता ना, देह का भान टूट जाए। इन दादियों में देह का भान नहीं था, ये थी इनकी तपस्या। कलकत्ता में ही देखो, निर्मल शांता दादी और संतरी दादी रहती थी, उनका रिलेशन था। ब्रिजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, भाभी ननद, लेकिन कभी नहीं उनके व्यवहार से लगा ये ननद भाभी है। एक दूसरे को वो भी दादी ही कहती थी। निर्मल शांता दादी भी बाबा को बाबा ही कहती थी। इतना हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। पवित्रता का मतलब व्यर्थ मात्रम अविद्या, केवल इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है, व्यर्थ मात्रम अविद्या। हमें व्यर्थ क्या होता है उसका ज्ञान ही नहीं है। अवगुण मात्रम अविद्या, मुझे अवगुण दिखाई ना दे। बाबा को किसी का अवगुण दिखाई देता था? कलकत्ता में ही तो अखबार वाले ने उल्टा डाला था ना, जब वहां से पत्र आया, बाबा इसने तो ऐसा ऐसा डाला है, केस करें। बाबा ने कहा बाप बच्चे पर केस कैसे करेगा, उसको बुलाओ और ब्रह्मा भोजन खिलाओ। और बुलाया गया, ब्रह्मा भोजन खिलाया गया सेंटर पर। उसके बाद वो आप ही बदल गया, फिर वो कहता है अब मैं अच्छा अच्छा लिखूंगा। पहले लिखा कि ये ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि ये दादा ज्वेलर था, ये तो साइकिल रिपेयरिंग करता था। आप सोचो कितना डिफरेंस, कहां ज्वेलर कहां साइकिल रिपेयर। लेकिन बाबा, बाबा ने ये नहीं कहा ऐसे लिखा है, इस पे तो केस करो मान हानि का। आजकल तो उसी में उलझे हुए हैं लोग, मान हानि के केस में। और बाबा ने क्या कहा, बाप बच्चे पर केस नहीं कर सकता, बाबा की दृष्टि। तो दृष्टि की पवित्रता क्या है, ये है दृष्टि की पवित्रता। मुझे ये महसूस हो ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये माता है, ये मेरी बहन है। हम तो अगर यहां रहे, अगर मेरा कोई लौकिक वाला आ जाए, भाई बहन भतीजा, हाँ, तो थोड़ा सा दूसरों को एहसास होगा कि हाँ ये लगता है इनके कुछ हैं। पर यज्ञ में हमने दादियों को देखा, एक नहीं अनेक देखा। हमने कुंज दादी को देखा, कुंज दादी पटना में रहती थी, कुंज दादी, किशनी दादी, किशनी दादी और फिर प्रकाशमणि दादी। कृष्णी दादी, प्रकाशमणि दादी, सत्ती दादी, ये तीनों दादियां जो हैं बहनें थी लौकिक में, और सत्ती दादी की बच्ची थी कुंज दादी। तो कुंज, ये दोनों दादियां कृष्णी दादी प्रकाशमणि दादी मौसी हो गई ना। पर कभी नहीं लगता था उनके व्यवहार से, मैं उनके साथ रही 2 साल, कृष्णी दादी कुंज दादी पटना में ही रहती थी। कुंज दादी की मौसी कृष्णी दादी थी, कृष्णी दादी गुरुवार को भोग बनाना है, घर संभालना है, और कुंज दादी भाषण वाषण में सब में होशियार, सेवा में। तो वो ऐसे थोड़ी कहती थी ये मेरी भांजी है ये बनाए ना रोटी, मैं थोड़ी बनाऊंगी। उम्र में तो वो बड़ी थी कृष्णी दादी, पर कृष्णी दादी देखो लगता ही नहीं था, संबंधों की फीलिंग नहीं थी, देह का संबंध, विकार कब आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कब आते हैं, जब हम अपने को देह समझते हैं। इसलिए गीता में क्या कहा है, हे अर्जुन, हे अर्जुन, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान। हमें कोई कुछ कह के तो देखे, 4 लोग कहेंगे बहन जी आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, 1 कह दे बहन जी आप बोलते तो अच्छा है पर आपने ये ठीक नहीं सुनाया, उसकी तरफ से आंख थोड़ी सी यूं हो जाएगी, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। 2 को और कहेंगे बहन जी आपके लिए ऐसे कर, अरे उसको बुद्धि नहीं है, बाबा ये नहीं करता था। ये तो हमने मम्मा बाबा को प्रैक्टिस, देखो मैंने आपको कितनी बातें सुनाई, बाबा है, बाबा की नजर तो बहुत, दृष्टिकोण जिसको आप कहते हैं एटीट्यूड, वो अखबार वाला हो वो इनकम टैक्स वाला हो, बाबा का एटीट्यूड, ये मेरे बच्चे हैं, क्या मेरे अंदर मेरा ये एटीट्यूड है, ये मेरे सब भाई बहने हैं। भाई साहब कहना और बहन जी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरा एटीट्यूड जब मैं व्यवहार में आती हूं तो मेरा एटीट्यूड क्या है। इसलिए बाबा के अंदर बहुत उदारता थी, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी सत्संग में जाइए साधु संत, उन लोगों को तो यही लगता है जो आए हैं ये तो सब फॉलोअर्स हैं, ये क्या करेंगे आप, फॉलोअर्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, फॉलोअर्स आएंगे टांग भी गुरुजी की दबाएंगे। हमारे यहां टांग दबाई जाती है क्या, कोई बाबा की टांग दबाता था? एक बार एक ग्रुप में एक माता जो काफी बुजुर्ग थी और एक भाई, माता होगी 80 या 85 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और जो भाई था वो 90 साल का था, आए बाबा से मिले, और लोग भी थे पार्टी में, तो बाबा ने उस भाई से पहले तो पूछा कि बच्चे तुम्हारी उम्र कितनी है, क्योंकि वो 90 की उम्र में भी ना भाई स्ट्रांग था, ऐसे नहीं बुढ़ा ऐसे नहीं लगता था। तो बाबा ने कहा बाबा मेरी उम्र 90 साल है, तो बाबा ने कहा बच्चे मैं 92, तो फिर भी बाबा तो बड़ा ही हुआ ना। बाबा अच्छा भक्ति में बहुत भगवान को याद किया है, बच्चे थक गए होंगे। फिर माता से बाबा बच्चियों बच्चियां इन्होंने तो बहुत भक्ति में भी सहन, लिटरेरी बाबा ने उस माता की टांगे दबाई, बच्ची भक्ति में बहुत सहन किया है, थक गए भक्ति कर करके। कोई करेगा संत महात्मा ऐसे करेगा? बाबा के विशालता निर्माणता, हम कहते हैं निर्माण बनो, निर्माण बनना नहीं है, अपने दृष्टिकोण को अपनी सोच को अपने संकल्पों को पवित्रता के हायर लेवल पर लाना है, और लेवल हमारा ये है आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। आप किसी भी सत्संग में स्वामी जी के पास महात्मा जी के पास जाओ, कोई देता है सौगात देता है, वो तो ये देखते हैं कितना चढ़ावा चढ़ा, ये बाबा का शुरू से सिस्टम है, आज नहीं है, बाबा इतनी अच्छी अच्छी सौगात देता था। हम तो क्योंकि छोटे बच्चे थे, जब हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए मैं केवल 5-6 साल की थी। अब बच्चों को तो नहीं लाएंगे ना मधुबन में, और बाबा तो बहुत स्ट्रिक्ट था। बाबा कहता था बच्चों को नहीं लाना है, तो हमें नहीं लेके आते थे। लेकिन बाबा पूछता, बाबा सबका जानता था, इसके घर में कितने बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, कैसे है। तो बाबा ने पहली बार जब पूछा तो हम छोटे छोटे थे, तो बाबा ने, आपको पता है, अब मैं सोचती हूँ, बाबा ने उस समय, मैं समझती हूँ 59-60 की बात होगी, जब लौकिक माँ बाप यहाँ आए, बाबा ने नया नया उस समय ये निकले थे बॉल पेन, और ऐसे लंबे लंबे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे नहीं आए हैं ना, बच्चे ये बाबा की तरफ से। आप सोचिए कौन देता है, क्या रिश्ता है। लौकिक माँ बाप आए, उनको सौगात दी, वो तो ठीक है सामने थे। और बाबा ने उनको क्या कहा पता है आपको, बाबा ने कहा देखो उन बच्चों ने आपको भेजा है ना, उनका भाग्य बना है बाबा की ये सौगात। हम छोटे बच्चे थे, आप सोचो कितना अच्छा लगा, ये बच्चे को सौगात मिलेगी कितना खुश होगा। तो वो लोग हर साल आते थे, बाबा हर साल हमारे लिए सौगात भेजते थे। हम तो तब आए जब थोड़े बड़े हो गए, लेकिन सौगात से तो हम बंधे हुए थे। तो ये जो हृदय की विशालता है, हम तो हर घड़ी ये देखते रहते हैं, इसने मुझे क्या दिया, ये मेरे लिए क्या लाई है। बाबा कहता है बच्चे मांगना नहीं है, कोई संस्था देखी है ऐसी जहां मांगा ना जाए, वहां तो बाकायदा रसीदें कटती हैं। ये सारी फाउंडेशन पवित्रता है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे कोई भी बात हो गई उसको बिंदु लगाओ। ऐसे नहीं बहन जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मैं आपको सुनाती हूं, मान लो 5 साल पहले, उदाहरण देती हूं, मान लो मैं 5 साल पहले गिर गई टांग टू, मैं आपको भाई बहनों क्या बताऊं, मैं गिर गई 1 महीना बिस्तर पे रही, तो कौन सा क्या आपको दिखाई देगा, बहन जी को कितना कष्ट हुआ होगा। जो थोड़े मान लो अटैच होंगे, अरे सचमुच हमने देखा बहन जी को इतना कष्ट था, कुछ बोली नहीं। तो मैंने किस बात से प्रभावित किया, किस बात से किया, अपने कष्ट से प्रभावित किया। लेकिन बाबा ने क्या सिखाया है, बच्चे साक्षी होके रहो, हिसाब किताब आया ठीक है, मुझे अंदर से महसूस हो ये मेरा हिसाब किताब है बाबा की याद में पूरा करना है। हिसाब किताब समझेंगे तब तो हम फटाफट उड़ना शुरू हो जाएंगे, और वो समझेंगे अब 5 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, कोई मर गया, किसी ने कुछ छीन लिया, किसी ने ले लिया, मैं उसी में बहन जी क्या बताऊं, बाबा ही मेरे साथ है, बाबा ही, बाबा कहां साथ है, मेरे साथ तो मेरा दुख है, क्या विचार है, हैं? क्या विचार है, राइट है या नहीं। हाँ भले अनुभव में हम कहेंगे भाई देखो ऐसी परीक्षा आई, लेकिन बाबा ने पार किया। बाबा हमें शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप बना रहा है। मैं कहती हूँ बाबा मेरे साथ है बहन जी, बिना बाबा के तो कुछ हो नहीं सकता, पर मैं आपको क्या बताऊं, तो ये तो दुख स्वरूप हो गई, परेशान स्वरूप हो गई, मैं शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, मेरा साथी कौन है, साथी कौन है, और वर्णन क्या है, मम्मा बाबा ने कभी ये नहीं सुनाया, दादियां सुनाती रही कि यज्ञ की स्थापना में लोगों ने कितना अपोजिशन सिंध हैदराबाद में भी किया, कराची में भी किया। वो तो पढ़ी होगी ना आपने जीवन कहानी, नहीं तो बाबा की जीवन कहानी की किताब खरीद के पढ़ो, लोगों ने कितना बाबा के लिए अपोजिशन में बोला, क्या क्या कहा, कितनी इंसल्ट की। मम्मा स्वयं कहा करती थी, बच्चे अगर तुम्हारी कोई निंदा करे तो क्या समझो, क्या समझो, कोई निंदा करे, कोई गाली निकाले, समझो ये हमारी प्रशंसा कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है। है ऐसी स्थिति है? है, सोचो। नहीं है। अभी घर जाएंगे ना वापिस, और बहू बेटे ने कुछ कह दिया, ये देखो आजकल की बहुएं, इनको पता ही नहीं क्या बोलना है, बस चालू प्रोग्राम। बेटा ना माने, कमाई करता है, पता नहीं इसको तनख्वाह तो कंपनी वाले बहुत देते हैं, ये क्या करता है, कभी हिसाब ही नहीं दिया। रसोई तो अभी तक एक है, बाप ही कमाता है, वो ही खिलाता है, कमा तो रहा है पर देता नहीं है। आप देखिए अंदर की फीलिंग्स। इसलिए प्यारे भाई बहनों, पवित्रता का अर्थ जो हमने समझा और हमने देखा, मम्मा बाबा को देखा, सबसे पहले पवित्रता माना मौन। मौन में रहना ये मतलब नहीं मैं बोलूंगी नहीं। हमारी मम्मा बोलती थी ना, अगर आप मम्मा की कभी आवाज सुने, सुनी है आप लोगों ने टेप में मम्मा की आवाज, किस किस ने सुनी है हाथ उठाओ, काफी लोगों ने, कभी सुन लेना। मम्मा ऐसे बोलती थी जैसे शेरनी एकदम, मम्मा के भाषण ऐसे जबरदस्त होते थे जो हमने सुने हुए हैं। और बाबा कई बार कहता था, बच्चे मम्मा बोलती है ना शेरनी शक्ति की तरह। बाबा बहुत महिमा करता था मम्मा की। लेकिन मम्मा मुरली चलाती थी तो एकदम शेरनी शक्ति, व्यवहार में एकदम साइलेंट। मैंने आपको सुनाया ना शायद एक दो दिन पहले भी, कल मम्मा चलती थी ऐसी नैन बस, ऐसे आंख तो घूमती नहीं थी मम्मा की। हमने मम्मा बाबा को ऐसे नहीं, बाबा ले जाते थे बच्चों को पहाड़ी पर घुमाने, बाबा चल रहा है मस्त। बाबा कभी ये नहीं देखता था ये अमीर है गरीब है। बड़े छोटे की मर्यादा वो तो स्वाभाविक है ना। आप भी अपने घर में अगर दो चार भाई बहन होंगे जो जिस आयु के बैठे हैं, आप लोग तो होंगे ना चार पांच भाई बहन घरों में। आजकल न्यू जनरेशन में एक एक दो दो बच्चे हैं, पुराने में तो दो दो चार चार भाई बहने हैं, तो ध्यान रहता है ना भाई ये मेरा बड़ा भाई है बड़ी बहन है, रहता है या नहीं रहता है। आप गुस्से में आके कुछ बोल दें वो अलग बात है, लेकिन आपको लगता तो है ना ये मेरा बड़ा भाई है बहन है, तो उनका हम उस तरीके से रिस्पेक्ट रखते हैं नहीं रखते हैं। चाहे शादी भी हो गई तो भी हम रिस्पेक्ट रखते हैं। तो वो मर्यादा रखना अलग चीज है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा कहते थे अब मान लो कोई शाहूकार यहां आता है और उसको हमने रख दिया जहां एक कमरे में पांच लोग रहते हैं, वो रह सकेगा? वो तो दूसरे दिन ही भागे जाएगा अटैची उठा के, कहेगा बहन जी मैं तो पांच लोगों में नहीं सो सकता। उसको कौन सा रूम चाहिए जिसमें एक नहीं तो दो हो बस, वो तीन चार में नहीं रह सकता है। तो वो तो ध्यान रखना पड़ेगा ना ये किस लेवल का व्यक्ति है। हो सकता है एक वाला भी हो, वो कहता नहीं मैं तो बहन जी एक रूम में एक जना रहे बस, चाहे छोटा हो। वो ध्यान रखना है, वो कदर करना, ये अलग चीज है। हम उससे कंपटीशन नहीं कर सकते, कोई दूसरा कहे क्यों बहन जी इसको समझती है पैसे वाला है, नहीं। बाबा कहता है अगर हम उसको उस लेवल से पालना नहीं देंगे तो उसका योग लगेगा नहीं ना। कुंज दादी सुनाया करती थी, किसी को यहां कोर्स कराया यहां मधुबन में ही, और उस व्यक्ति ने कुंज दादी को कहा कि मैं चाहता हूं मैं आपके बाबा से मिलूं। तो कुंज दादी ने बाबा को बाद में बताया, बाबा बाबा ने कहा बच्चे कोर्स पूरा हो जाएगा तो बाबा मिलेगा। अब दो तीन दिन का पहले हो चुका था, फिर सात दिन का कोर्स हो गया, तो कुंज दादी ने कहा बाबा वो व्यक्ति मिलना। तो एक दिन बाबा ने कहा अच्छा कल बाबा मिलेगा। अब दूसरे दिन उसको क्लास व्लास कराया, फिर कुंज दादी गई, बोली बाबा वो कोई अच्छा वीआईपी था। तो बाबा ने कहा बच्चे उसको ले आओ, यहीं ले आओ। अब कुंज दादी उलझन में, क्या करे, क्यों उलझन में, क्यों उलझन में, क्योंकि बाबा गेहूं साफ कर रहा था बच्चों के साथ, भाई बहने और भी बैठे। वो कहे मैंने तो बाबा मन में सोचे, तो बाबा खूब हंसे, कुंज दादी सुनाया करती थी, और कहे बाबा आप वहां चलो ना मिलने, वो उसकी बहुत भावना है। बाबा कहे देखो कुंज को शर्म आ रहा है, दे अभिमान आ रहा है, और बाबा अपने उसमें आ गए। बाबा ने कहा नहीं बच्ची यहां लेके आओ। अब बाबा के आगे कितना, दादी ने कुछ थोड़ी देर रिक्वेस्ट तो किया, बाबा ने कहा नहीं, कुंज दादी समझ गई। फिर कुंज को लेकिन लगे कि अब मैं ये वीआईपी को ले जाऊंगी, ये देखेगा कि इनका बाबा गेहूं साफ कर रहा है, उसके मन में ये। कुंज दादी सुनाती थी, मैं उसको लेके गई, बाबा के हाथ में थाली, बाबा गेहूं साफ कर रहा है और भाई बहन भी बैठे थे। तो बाबा ने कहा आओ, बाबा का ये तो कोई भी आता था ना तो पेट था, आओ बच्चे। और उसको उसी स्थिति में साक्षात्कार हुआ, बाबा एकदम विष्णु चंद्र। वो तो इतना खुश, बात नहीं पूछा, क्योंकि बात कर्म की नहीं थी कि बाबा गेहूं साफ कर रहा है, बात किसकी थी, बात किसकी थी, हायर कॉन्शियस की। और हम क्या करेंगे, अगर मैं मान लो रोटी बना रही हूं या तो कहेंगी बहन जी किसी को मिलना, अरे दो मिनट बिठाओ मैं आती हूं, मैं जाऊंगी तो थोड़ी साड़ी भी ठीक करूंगी, बाल भी ठीक करूंगी, मुंह भी धो के आऊंगी, दे अभिमान। और आगे अभी तो आजकल मुरलियां वो पद आती नहीं, ले बाबा कई बार कहता है बच्चे मान लो तुम बर्तन मांज रही हो, और ये तो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किए हुए हैं। बड़े सेंटरों में जब रहना शुरू किया, एक जगह हमें झाड़ू लगा रही थी सामने कोई, तो पहले उसने सोचा क्योंकि छोटी कन्याएं तो कैसे लगेंगी, झाड़ू लगा रही थी, साड़ी का पल्ला यूं फंसाया हुआ, उसने सोचा कोई काम करने वाली माई होगी, तो हमने कहा आइए आपको दिखाते हैं। वो तो हैरान हो गया जब उसको म्यूजियम समझाना शुरू किया। तो बाबा कहते थे बच्ची मान लो आप बर्तन मांज रहे हो और कोई आ जाता है, तो आप उसको कहो आइए बैठिए और उसको जाके ज्ञान सुनाओ। तो वो सोचेगा लो यहां तो देखो ये बर्तन मांजने वाली को भी इतना ज्ञान है। ये लेवल चाहिए, हम तो इसी में फंसे रहते हैं। देखो ना ये, मैं इसको इतना सहयोग देती हूं, इतना करती हूं, मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरे लिए हर घड़ी उल्टा ही बोलती है, मेरे घर में बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो अभी आप इस भट्टी से जाएंगे ना, अभी भी आपके पास दो दिन हैं, अपनी कॉन्शियस को हर घड़ी, अभी सुन रहे हो इसी कॉन्शियस से सुनो, इसके लिए पक्का करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस कॉन्शियस में सुनो, या मैं सर्वशक्ति जो आपको सहज लगे, मैं सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा। आपके मन में बहुत उथल पुथल है, क्योंकि हर एक का जीवन अपना अपना है, कईयों के पास बहुत सी बातें हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, आज से उनको कहिए स्टॉप। क्या कहना है, ये नहीं कहना मेरे को तो हार्ट की बीमारी है, मेरा तो जब से ऑपरेशन हुआ है ना मैं इतना चल नहीं सकती हूं। अरे मम्मा बाबा को देखिए, दादियों को देखिए, दादियों ने हमारी ने क्या कौन सी परीक्षा नहीं पार की। डॉक्टर देखने आया कलकत्ता में, चारों दादियां बैठी थी, निर्मल शांता दादी, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, ये सब। तो डॉक्टर आया जब देखने, तो सब आपस में ऐसे चेहरे खिले हुए, और वो कहते हैं आइए डॉक्टर साहब बैठिए क्या हाल है। डॉक्टर यही कंफ्यूज हो गया कि कौन सा पेशेंट कौन सा, वो कहता है जी पेशेंट कौन है। और हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसी शक्ल, डॉक्टर साहब सवेरे से उल्टियां आ रही हैं, इतने बीमार नहीं होते हैं जितना हम बन जाते हैं। गलत बोला क्या मैंने? आप हंस रहे हैं सब। ये देह अभिमान है। ठीक है, शरीर को बीमारी है, बुखार है मेरे को, अभी मैंने देखा 102 बुखार है, लेकिन आत्मा तो ठीक है ना। हेल्दी माइंड कीप्स हेल्दी बॉडी। मेरा मन जो है, बुद्धि जो है, वो हेल्दी चाहिए। ये तो हमारे तो बहुत अनुभव है ऐसे। दो बुखार है, जा रहे हैं भाषण कर, चाय पी के गए, भाषण करके आए, आके फिर सो गए। बाबा अपना काम तो कराता ही है ना। तो अंदर में ये स्टेमिना, ये विल पावर, मैं कौन हूं, पवित्रता की शक्ति तब आएगी। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं और वो मेरा साथी है। चाहे मैं अपने कमरे में अकेली हूं, दुकेली हूं, लेकिन मेरा साथी शिव बाबा है। कोई परीक्षा भी आ गई, हम तो हमेशा कहते हैं, कोई कहता है मैं बाबा के पास मधुबन में गया, मैंने सोचा बाबा मेरे धंधे में थोड़ा घाटा है या मेरी नौकरी लग जाए, तो मैं तो खुले उसमें कहती हूं भाई ध्यान से सुन लेना, अगर आपकी लगी हुई नौकरी है तो जा, हो सकता है जाए तो आपकी छूट जाए, धंधा अच्छा चल रहा है जाए तो हो सकता है घाटा पड़ जाए, क्योंकि यहां तो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। कोई माता बाबा के आगे आई रोती रोती, बाबा मेरा पति मुझे बहुत मारता है पवित्रता के लिए। पता है बाबा ने उसको क्या कहा? क्या कहा होगा, कई बार मुरली में भी आता है, बाबा ने कहा बच्चे तुमने भी उसको पिछले जन्म में मारा होगा। ऐसा नहीं फिर आप लोग ये करो भी घर जाके मारना शुरू कर दो और को पिछले जन्म में तुमने मारा था। माना बाबा ने हर समस्या को समस्या नहीं समझा, हल्के रूप में लिया। हम क्या करते हैं, जरा हो तो जाए थोड़ी सी, भाई मेरा पति तो ऐसा है बहुत तंग कर, आज देखो ना नाराज होके गया, खाना नहीं खाया। क्या वर्णन कर रहे हैं, किसको वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हो, विचार कीजिए। पवित्रता की स्थिति, कोई आत्मा आज नाराज होके भी गई, मान लो आपका संबंध भी है, पति पत्नी हो, मां बेटे हो, कुछ भी है, अच्छा ये बाबा का बच्चा नाराज होके गया है, तो कोई बात नहीं बाबा, ये आत्मा खुश रहे, उसको योगदान दो, ना कि अपनी 10 सहेलियों को या अपनी मां को, बहन को, भाई को फोन करो, देखो मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूं फिर भी ये तो नाराज होके जाते हैं। किसको कह रहे हो, कर्मों का हिसाब किताब भूल जाते हैं। यहां होना है साक्षी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी आत्मा नाराज होती है तो होने दो, हम तो बाबा के हैं, कहां मेरी कमी है उसको ठीक करना है। कल वो व्यक्ति नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम वर्णन करते हैं, 10 लोगों को सुनाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर कहते हैं पता नहीं लोग तो हमारी निंदा करते रहते हैं। आपको एक बात बताऊं, कोई किसी की निंदा नहीं करता, हम अपनी निंदा खुद ही करते हैं। मान लो मेरे से कोई बड़ा है, उसने आज मुझे डांट लगाई, ये मेरी सहेली है, अब मैं इसको कहती हूं देखो ना ये हमारी बड़ी दीदी ये कैसी है, जरा सी बात थी मैं जरा भूल गई, मेरे को डांट लगाई, ये किसने कहा, किसने कहा, क्योंकि ये मेरी सहेली है। अब ये मेरी सहेली क्या करेगी, ये क्या करेगी, इसकी भी आगे सहेली है, ये कहेगी तुम बताना नहीं, मैं तुम्हें अपना समझ के बात बताती हूं, इनकी बड़ी दीदी है। तो हमारी गुलजार दादी जी हमेशा कहती थी एक को एक होता ही है, ये मेरी सहेली की कोई और सहेली, उसकी कोई और सहेली, फिर बहुत सी कहानियां, वो सारा घूम फिर के फिर कहेंगे ये है ही ऐसी, मेरी सारी बातें इसने फैला दी, उसने फैलाई कि तूने फैलाई, तो चाहिए समाने की शक्ति, फुल स्टॉप। बस एक ही अभ्यास करना है पवित्रता को अपनाने के लिए। आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा। कौन सा? मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी। कोई भी बात आए लगाओ बिंदी। किसी ने कह दिया बहन जी अच्छी नहीं है, बिंदी। इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बिंदी। भाई अब लोग कुछ तो कहेंगे ना, एक बहुत पुराना है ना गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना एक पुराना गाना। तो लोग कुछ तो कहेंगे। हम सेलो टेप तो दूसरे के मुंह पे लगा नहीं सकते, लगा सकते हो? तो कहां लगानी है सेलो टेप? सेलो टेप कहां लगानी है? अपने यहां लगा लो सेलो टेप। मुझे किसी की निंदा करनी ही नहीं है। अगर मेरे मन संस्कार है अभी तक निंदा चुगली करने का, तो मैं योगी नहीं बन सकती। हम लोग छोटे थे ना तो गाते थे कविता, योग योग कहने से योगी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हाथ कमंडल लेकर योगी नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। आंख मूंद लेने से योगी नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। खाली मधुबन आ जाने से तपस्वी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। इसलिए क्या करना है, क्या करना है? बिंदी लगानी है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, अभी तक मेरे साथ जो कुछ हो गया बिंदी। भूल जाओ बिंदी, माना मैं भूल गई, मेरी इंसल्ट हुई, पति ने मारा, माँ ने मारा, पड़ोसी ने मारा, सासू ने, ऐसे सब बिंदी। मैं आत्मा, जैसे मैं पूछती हूँ कि भाई जब मैं आत्मा निकल जाऊंगी, परम धाम में पहुंच गई, आप सब भी मेरे साथ वहां पहुंच गए, कौन कौन मुझे पहचानेगा वहां? हाथ उठाओ जो पहचानेंगे। ये क्या हुआ, नहीं पहचानोगे? क्या बात है, आप तो कहते हो बहन जी आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो। क्यों नहीं पहचानेंगे बताना? पहचान इस चमड़ी की है, ये यहीं छूट गया। अब मैं भी बिंदी, आप भी बिंदी, कौन पहचानेगा किसको? ये निरंतर अभ्यास, बिंदी बिंदी बिंदी, सब एकदम क्लियर करो। अभी आप दो दिन हो ना, अभी से चालू कर दो बिंदी। बस मेरा बेटा बेटी कुछ नहीं, बाबा हमेशा हंसाते थे, मम्मा हमेशा कहती थी बच्चे को बच्चे होते हैं क्या, बच्चे को बच्चे होते हैं क्या? मैं खुद ही शिव बाबा का बच्चा हूं तो मेरे को बच्चा कहां से आया? कहना नहीं है, ये फीलिंग अपने अंदर, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। ये जो बाल बच्चे दिए हैं ये भगवान ने सेवा करने के लिए दिए हैं। बहनें सेंटर पर क्या करती हैं? बहनें क्या करती हैं? वो जरा 20-25 आने वाले भाई बहनों को संभालती हैं, यही करती हैं ना। आप अपने अपने सेंटर पे जाते होंगे बहनों के पास, सवेरे गए, दोपहर गए, शाम गए, बहनें बहुत प्यार से अटेंड करती हैं। तो ये आपका घर भी तो आश्रम है ना, आपको 2-4 बच्चे हैं, आप ये जिज्ञासु संभालो ना अच्छे से। क्या विचार है? ये बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए दिए हैं। क्या करूं, बेटा मानता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। अब सारा दिन कहेगी खा ले खा ले खा ले, बच्चा कहता नहीं खाना नहीं खाना, छोड़ दो ना, नहीं खा रहा है छोड़ दो। आप पीछे क्यों पड़े हैं? बिंदी, मैं बिंदी, बाबा बिंदी। मगर मैं बिंदी कैसी हूं? ऐसे टपकने वाली, वो गीली बिंदी लगाओ तो टपक जाती है ना, तिलक लगाओ कई बार, वो वाली बिंदी नहीं। सर्वशक्तिवान बाबा की बच्ची हूं, बाबा मेरा साथी है। बस ये है हमारी पवित्रता की स्थिति, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि ये पवित्रता का विषय तो इतना गहरा है, जो बात मत पूछो, आप बैठे रहो, हम सुनाते रहेंगे। मैंने अभी घड़ी देखी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, हाथ उठाओ भाई। माताएं कोई प्रश्न नहीं है? प्रसन्न बहन है? प्रसन्न, तो चलो बाबा के पास। आप सब जो है ना बाबा के आगे बैठ के पत्र जरूर लिखना, ऐसे नहीं एक पत्र, दो दिन में कम से कम 20 पत्र लिखो। अपने कमरे में भी जाओ ना, ऐसे नहीं गए और लेट गए, बाबा को पत्र लिखो, छोटा छोटा ही लिखो, चाहे इतना इतना पैराग्राफ। क्या लिखना है? अपना सारा, बाबा मैं आपका बच्चा बन गया हूं। फिर मान लो मेरे में गुस्सा है, बाबा आप तो मुझे बहुत शांति का दान देते हो ना, शांति की शक्ति देते हो। ये नहीं कहना बाबा मेरे में गुस्सा बहुत है, फिर वो ही आएगा क्योंकि आपने उसको बुला लिया। ये संसार बहुत बड़ा गुंबद है, आप जो आवाज निकालेंगे वही लौट के आएगी। मैंने कहा हो तो हो ही लौट के आएगा, इसलिए बाबा आप शांति दाता हैं, मैं आपकी छत्र छाया में हूं। बाबा आप तो मुझे बहुत बहुत शांत, मीठा, धैर्यवत, प्यार से रहना है। ये लिखो पत्र, समझ में आया क्या लिखना है? ये नहीं लिखना बाबा मेरी तो ये इच्छा है, ऐसा हो जाए मैं ब्रह्मा भोजन कराऊंगा, मेरा ये पैसा अटका हुआ है कहीं आ जाए तो आधा पैसा मैं दे दूंगा यहां हॉस्पिटल में, ये नहीं लिखना है। बाबा आपने मुझे इतने खजाने दिए हैं, खजाने दिए हैं या नहीं दिए हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्प समय श्वास खजाना है, तन मन धन ये सब खजाना है। बाबा मेरा संकल्प है मेरे ये सब खजाने आपकी याद में, आपकी सेवा में सफल हो। एक एक संकल्प बाबा आपकी याद में रहे। लिखो फिर सचमुच बाबा मैं खुश नसीब हूं। बैठो थोड़ा सीधा होके, यही संकल्प यही योग है। समझते हैं हम खुश नसीब हैं? सचमुच बाबा मैं खुश नसीब हूं। सीधा होके बैठिए, करिए संकल्प अपने अंदर, बाबा मैं खुश नसीब आत्मा हूं जो भाग्य विधाता बाप स्वयं मुझे मिला है। बाबा कमाल है आपकी, भाग्य विधाता का हाथ मुझ आत्मा के सिर पे है, मुझ आत्मा का हिसाब किताब अब केवल एक अविनाशी बाबा से है, सर्वशक्तिवान बाबा से है, सर्व गुणों के भंडार बाबा से है। बाबा आप ही मेरे सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। बाबा मैं आत्मा आपकी छत्र छाया में सचमुच पद्मा पदम भाग्यवान खुश नसीब हूं, सौभाग्यशाली। मन बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए, भाग्य विधाता शिव बाबा पर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा पर, सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा पर, सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु बाबा मुझ आत्मा पर शक्तियां बरसा रहे हैं। गुणों का भंडार बाबा मुझ आत्मा पर, गुण बरसा रहे हैं। कृपालु बाबा की कृपा, रहम दिल बाबा का रहम, मैं सचमुच ईश्वरीय गोद में हूं, ईश्वर का बच्चा ईश्वरीय गोद में, वो सर्वशक्तिवान बाबा मुझ आत्मा के बाबा है। सचमुच ये मेरा जन्म दिव्य अलौकिक पवित्र जन्म है, शुक्रिया बाबा, आपने मुझ आत्मा को स्वीकार किया बाबा, कितनी महिमा करूं बाबा मैं आपकी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान, भाग्य विधाता की संतान, सतगुरु सत शिक्षक सत माता पिता की संतान, मेरा बेहद का बाबा मुझ आत्मा को विश्व का मालिक बना रहा है, वर्तमान में मैं आत्मा एकदम बेफिकर बादशाह हूं, क्योंकि मुझ आत्मा का संबंध सर्वशक्तिवान बाबा से जुड़ गया है, वही बाबा मेरा रक्षक, वही बाबा मेरा पालनहार, मैं खुश नसीब आत्मा मुझ जैसा भाग्यवान कौन, भाग्य विधाता बाबा, दिव्य बुद्धि दाता बाबा, वरदाता बाबा, मैं आपका नंबर वन सपूत आज्ञाकारी बच्चा हूं बाबा, अनुभव कीजिए, बाबा की दुआएं हैं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का वरदान महसूस कीजिए, मुझ आत्मा पर बरस रहा है, आंखें खुली रखें, बाबा के वरदान प्रभु प्रेम को महसूस कीजिए, ओम शांति। तो अभी जैसे हमने अपना योग अभ्यास किया, तो दुनिया में भी आप देखते हो ना, जो लोग थोड़ा बाहर से, पर्सनैलिटी दो तरह की है ना, बाहर से एकदम अपडेट रहते हैं तो क्या करते हैं, बार बार अपने को आईने में देखते रहते हैं, कार से उतरेंगे तो वो कार के शीशे में ही देखते हैं मैं ठीक हूँ, स्कूटर वाला आप देखेंगे वो हेलमेट उतारेगा तो उसी में देखता है ठीक हूँ, माताएं बहनें भी अपना छोटा सा आईना वगैरह पर्स में रखेंगे देख लेंगे, तो अगर हम भी चाहते हैं हमारी कॉन्शियस इतनी हायर बने, एक घंटा नहीं तो दो घंटे में जरूर अपने को भीतर में देखो, मेरी वाणी मेरी दृष्टि हायर कॉन्शियस में है, बार 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 जब अपने को देखेंगे तो कुछ समय के बाद ही आप पाएंगे कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व इसमें इतना अंतर आ जाएगा आप सोच नहीं सकते, प्रसन्नचित दाता की स्थिति, सबको आपसे ऐसा साक्षात्कार होगा जैसे देवी देवता है, तो इसलिए एक एक ही पुरुषार्थ करना है बस, उसमें सब पुरुषार्थ आ जाएगा। ठीक है, ओम शांति।
तो पवित्रता की, पर्सनालिटी की, आदर्श उदाहरण मूरत, दैवी मूरत, दर्शनीय मूरत दीदी का वेलकम भी और शुक्रिया भी।